ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की अनूठी श्रृंखला।
आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्य साई प्रोग्राम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के बाल्यकाल के कुछ अलौकिक प्रसंग एवं अवतार वाणी के अंतर्गत 3 मार्च सन 1992 में शिवरात्रि के दिन भगवान द्वारा दिए गए एक दिव्य संदेश का एक भाग भी सुनेंगे। हम साई का प्यार जीवन आधार कार्यक्रम के अंतर्गत एक मनोरम भेंट वार्ता के साथ ही साथ भजन शिक्षा के अंतर्गत एक भजन गायन भी सीखेंगे।
तो आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार।
आज इसके अंतर्गत हम भगवान बाबा की पूर्व छात्रा रह चुकी सुश्री किरण बालाजी अरोड़ा के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता का 5वां भाग प्रस्तुत करेंगे। किरण जी भगवान बाबा के अनंतपुर स्थित महाविद्यालय संकाय के हिंदी विभाग में अपनी सेवाएं श्री चरणों में अर्पित कर रही हैं।
कितना अच्छा लगा होगा,
कितना अच्छा लगा
जिसके कारण आप इतने दूर से आए थे। उन दिनों अम्बाला से आना कोई छोटी बात नहीं थी।
एक्चुअली वास्तव में भगवान पुटपर्ती आ चुके थे, पर हम कहाँ रहेंगे, किसके साथ रहेंगे, इसलिए हम अनंतपुर हमें रहना ही पड़ा। और अनंतपुर में जो इनिशियल शॉक्स आप सोच ही सकते हैं,
खाना अलग, भाषा अलग, रहना उठना बैठना सब अलग,
सब अलग। और हिंदी कोई समझे ना, अंग्रेजी कोई बोले ना,
सब तेलुगु ज्यादातर बोलते थे।
हमें रसम सांभर खाने की आदत नहीं थी, तो शारीरिक रूप से भी अनेक प्रकार के कष्ट। और
गर्मी, इतनी गर्मी,
इतनी गर्मी, और बात किसी से कर नहीं पा सकते थे हम, यू नो, वो बहुत बड़ी कठिनाई लगी थी। हम किसी से बात नहीं कर सकते। एक पुष्पा मैडम थी जो हिंदी बोलती थी, जो हमसे हिंदी में वार्तालाप करके हमें थोड़ा दिलासा दे दिया करती थी। उन्होंने ही कहा था तुम मतलब लाइब्रेरी आ जाया करो, वहां पर पुस्तकालय में कोई किताबें पढ़ लिया करो, अपना टाइम पास करो। सोचो पूरा पूरा दिन ऐसे पौने दो महीने हम बिना किसी काम के,
मम्मी पापा से दूर, पहली दफा जिंदगी में घर से दूर, बहुत ही मुश्किल रहा होगा।
बहुत मुश्किल रहा मेरी बहन के लिए तो बहुत अधिक। वो माँ से बहुत जुड़ी हुई थी और अटैच्ड थी, तो रोज ही बेचारी रोती थी। पर पत्र लिखने का ही मतलब, उन दिनों टेलीग्राम की भी सुविधा नहीं थी, फोन की सुविधा तो बहुत दूर, केवल पत्र का ही माध्यम था। तो रोज बैठकर हम पत्र लिख लिया करते थे माता पिता को, वहां से पत्र आया करते थे। इस प्रकार से किसी प्रकार से हमने पौने दो महीने बिताए। पर तत्पश्चात हमारी जो दाखिला हुआ और स्वामी वहां थे, बहुत अच्छा लगा। और सबके दाखिले होने के पश्चात हमें जो पोर्टिको मार्बल एरिया कहा जाता है, वहां पर बैठाया गया
कॉलेज में एडमिशन्स लॉबी के पास।
हाँ, लॉबी के पास हमें सामने ही बैठाया गया, क्योंकि हम इतनी दूर से आए थे।
बिल्कुल।
तो स्वामी आए प्रिंसिपल के साथ, वहां खड़े हुए और उन्होंने पूछा कि स्टेट से बाहर से कौन कौन आया है।
दो ही हाथ ऊपर,
दो ही हाथ ऊपर थे। तो स्वामी ने हमें खड़ा किया, हमसे बात चित की।
किस भाषा में बात की बाबा?
हिंदी में, वो हैदराबादी हिंदी, जुड़ी पुड़ी हिंदी। हाँ। से स्वामी ने पूछा हमारे माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, पिताजी क्या करते हैं, और हम कहाँ से आए, हमने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, विषय पढ़े हैं, यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, आदि आदि बहुत कुछ परिवार के बारे में पूछा। और जैसे जैसे उन्होंने पूछा हम उत्तर देते रहे। बहुत प्रसन्नता थी हमें। हम खड़े थे बिल्कुल स्वामी के बिल्कुल समीप, यानी कुछ इंचों की दूरी पर। फिर बढ़ाकर उन्होंने हमारे सरों पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं हूं, तुम्हें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा।
कितना अच्छा,
मैं तुम्हारी माँ हूँ। बहुत अच्छा लगा। फिर नमस्कार भी दिया और फिर हमारी क्लासेस शुरू हो गई। यहाँ पर एक बड़ी मनोरंजक घटना और जुड़ी हुई है।
बताइए।
वो ये हुआ कि पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस जब शुरू हुई तो हमें कुछ कुछ समझ आने लगा, धीरे धीरे इंग्लिश भी समझ में आने लगा, पर फिलॉसफी जो थी यानी दर्शन
जी,
वो पहले वेस्टर्न फिलोसफी अर्थात जो
पहला कोर्स
पश्चिमी पाश्चात्य दर्शन से उन्होंने शुरू किया और पहले लेखक थे डेकार्ट्स फिलोसफर। उनके जो कॉन्सेप्ट्स थे या जो कि उनकी दर्शन के वो थे नियम आदि थे वो सब हमारी समझ से परे बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से तैर जाते
हैं। वो सबकी समझ से परे ही रहते हैं वो। मुझे भी शुरू में समझ नहीं आए थे।
अच्छा
मैंने भी वही कॉम्बिनेशन पढ़ी है अनंतपुर में। अच्छा, जो आपने पढ़ी थी।
अच्छा अच्छा ये सुनकर खुशी हुई। पर आई एम बिकॉज आई थिंक आदि ये सब बड़ा हमें ना
रैशनलिज्म
बड़ा कंफ्यूजन करने वाला लगा। कुछ मतलब पल्ले नहीं पड़ा। भारतीय दर्शन फिर समझ में आ सकती थी क्योंकि हमारे घर का वातावरण ऐसा था। किंतु ये पाश्चात्य दर्शन बिल्कुल परे। तो बहुत घबराए हुए मेरी बहन तो रोया करती थी कि अब समझ नहीं आती कैसे पढ़ेंगे क्या करेंगे। और वो भी जो हमारी टीचर थी क्योंकि हमारे कुछ तेलुगु मीडियम बच्चे भी थे साथ में इंग्लिश मीडियम जिन्होंने लिया तो था पर समझ उनकी ऐसी कच्ची पक्की थी तो वो आधा तेलुगु में पढ़ाएं आधा इंग्लिश में पढ़ाएं ऐसा कुछ तो बहुत ही भयभीत हो गए हम। पर सौभाग्य से एक 8-10 दिन के पश्चात हम पुट्टपर्ती लाए गए। कोई त्योहार था शायद गणेश चतुर्थी का कि क्या तो हम लाए गए और भगवान ने हमें मंदिर में बुलाया सब बच्चों को। हम शायद 10-12 बच्चे ही थे जो उन दिनों भगवान के पास ना आया करते थे रेगुलरली आया करते थे और 2-3 टीचर्स साथ में आया करती थी। हमें बुलाया और स्वामी बातचीत करने लगे और बातचीत के दौरान ही अचानक हमें लगा कि हमारे बारे में बात की जा रही है।
अच्छा
तेलुगु में ही बात कर रहे थे भगवान और हमारी जो असिस्टेंट वार्डन उन दिनों जयमा मैडम होती थी वार्डन तो मिस सुबम्मा थी उन्होंने कुछ कहा हमारे बारे में। हमें ऐसा अंदेशा तब हुआ जब सब लोग हमारी ओर देखने लगे।
अच्छा
और स्वामी ने भी हमारी ओर देखा तो मन में बड़ा भय हुआ कि हमारी बात हो रही है तो क्या हमने कुछ गलती कर दी है कि क्या अब इसका क्या फल होगा। पर भगवान तो करुणा से भरे हैं उन्होंने हमारी व्यथा को जाना फिर हमें कहा नहीं नहीं उन्हें समझाया तेलुगु में कुछ समझाया बाद में उन्होंने बताया कि उन्होंने हमारे ड्रेस कोड के ऊपर स्वामी से पूछा था।
अच्छा
हुआ यह था कि प्रॉस्पेक्टस में जो आया था हमारे एप्लीकेशन के साथ उसमें सलवार कमीज पहन सकते हैं ये अनुमति विद्यार्थियों के लिए थी।
अच्छा
तो हम स्कूलों में तो स्कर्ट्स पहना करते थे तो माँ ने हमारे लिए कुछ सूट सिल दिए थे। अच्छा। पंजाबी सूट और हमें दिया था और हम वही पहन रहे थे तो और हम पहले व्यक्ति थे विद्यार्थी थे जिन्होंने पंजाबी ये ड्रेस पहनी थी।
हाफ साड़ी और साड़ी पहनते थे।
हाफ साड़ी का ही ज्यादा रिवाज था उन दिनों ना कॉलेज में तो उन्हें ये लगा कि कोई फैशन की ड्रेस है।
बड़े मॉडर्न हो गए होंगे आप लोग तो फैशन ट्रेंड सेटर्स
क्योंकि हमने तो सोचा कि हम बड़े
नॉर्थ में तो वो बहुत मॉडर्स्ट माना जाता है।
मॉडर्स्ट नहीं और हमारे यहाँ तो रिवाज हम पंजाबियों के तो रिवाज की बड़े बूढ़े से लेकर बचपन सब यही पहनते हैं सलवार कमीज पहनते हैं
दुपट्टा के साथ
वो हमारी सभ्यता का
अनंतपुर के लिए वो बहुत फैशनेबल रहा होगा।
तो यही उनके मन में भय था अंदेशा आया तो उन्होंने पूछा भगवान से
स्वामी ने क्या बोला
तो बहुत ही सुंदर स्वामी ने उन्हें समझाया और बाद में हमें पता चला कि स्वामी ने ये कहा कि ये फैशन की ड्रेस नहीं है ये तो उनके प्रदेश की ही वेशभूषा है और ये फैशन करने के लिए नहीं पहन रही हैं ये उनके लिए बहुत सहूलियत वाली पोशाक है इसलिए पहन रही हैं और इन्हें पहने दिया जाए क्योंकि इन्हें साड़ी का अभ्यास नहीं है धीरे धीरे साड़ी का अभ्यास जब पड़ जाएगा तब इन्हें साड़ी पहनाई जाए और इन्हें मतलब जो भी है परमिशन दे दी जाए कि वो हम ड्रेस पहन सकें। बहुत प्रसन्नता हुई और मतलब ये इस बीच जो वार्तालाप होता रहा हमें समझ में नहीं आया था पर फिर भगवान ने हम दोनों बिल्कुल सामने ही थे हमें खड़ा किया फिर स्वामी ने हमें बताया कि किस प्रकार से स्वामी जानते हैं वो कैसे ड्रेस है क्योंकि पुट्टपर्ती में हमें साड़ी पहनना आवश्यक माना जाता था हमने साड़ी पहनी हुई थी तब भगवान के सामने ना सलवार कमीज पहनी नहीं थी तब तक तो स्वामी ने बताया कि मुझे मालूम है पंजाबी ड्रेस कैसा होता है स्वामी को मालूम स्वामी ने कहा और फिर इशारे से स्वामी ने सलवार कैसे पहनी जाती है वो पहनकर दिखाई खींचकर ऊपर जैसे पहनते हैं
पजामे की तरह
पहनकर बोलते ऐसे पहनता है ना और हम दोनों ने सर हिलाकर कहा हाँ स्वामी ऐसे ही पहनते हैं फिर ऊपर से ये जैसे कमीज डाली जाती है वैसे पहनकर स्वामी ने दिखाया और पूछा ऊपर से ऐसे पहनते हैं ना तो हमने कहा हाँ स्वामी ऐसा ही पहनते हैं फिर स्वामी ने कहा इसके ऊपर कंधों पर जैसे हम दुपट्टा डालते हैं वैसे एक तरफ डालकर फिर दूसरे हाथ से दूसरी तरफ डालकर इशारा करके दिखाते हुए कि दुपट्टा डाला जा रहा हो डालकर फिर इतनी सुंदर तरीके से स्वामी बिल्कुल एक नारी की तरह जो बड़े स्टाइल से चलती है फिर चलकर दिखाया कि तुम ऐसा पहनकर ऐसा चलते हो ना, तो हम बहुत प्रसन्न हो गए, सारा भय निकल गया मन से, सब लोग खूब हंसे। स्वामी ने कहा कि जरूर पहनो, तुम्हें परमिशन स्वामी ने दिया, तुम पंजाबी ड्रेस पहन सकता है। तो हमारा भय दूर हो गया, बहुत प्रसन्न हो गए। फिर ये और किसी ने नहीं समझा और ना ही सुन सके, मेरे साथ बिल्कुल करीब खड़े थे जो स्वामी ने, बहुत करीब आकर,
हाँ जी,
अर्थात उनके जो केश थे मेरे चेहरे को लग रहे थे, हाँ। इतने समीप आकर मेरे कान के पास बोला, रात को पैंट भी डाल सकता है, कोई बात नहीं। ये ऐसा कहा क्योंकि उन दिनों हम नाइट सूट पहना करते थे, पैजामा और ऊपर से ही ना कमीज जैसी।
तो उसके बारे में कह रहे थे रात को पैजामा।
और विश्वास कीजिए कि और किसी ने इस बात को नहीं सुना, मेरी कान में स्वामी ने ये बात कही।
एटलीस्ट आपको पूरा विश्वास हो गया स्वामी को सब मालूम है,
सब मालूम है,
हम कैसा उठते हैं, कैसा बैठते हैं, क्या पहनते हैं,
बिल्कुल
पैंट भी पहन सकता
है सब। स्वामी का ऐसा, ये स्वामी की बहुत जो सटल सेंसिटिविटी है वो दिखाता है कैसे ऐसे समय में ना हमारे मन को भय से, हाँ।
नहीं तो बड़ा अजीब है, आप सोचो कि नॉर्थ इंडिया से सिर्फ दो लड़कियां हैं, ऐसे कॉलेज और हॉस्टल में जहां का पूरा वातावरण अलग है, लोग खाना बिल्कुल डिफरेंट खाते हैं, सब दूसरी भाषा बोलते हैं, आप कितना आउट ऑफ प्लेस फील करोगे, सिर्फ स्वामी के कारण आप इतने आराम से।
और स्वामी ने हमें इतना प्यार दिया, हाँ। इतना प्यार दिया कि कह नहीं सकते, हर बार स्वामी हमसे।
और अगर आपके पास स्वामी का सपोर्ट नहीं होता, आई एम श्योर आप भाग गए होते बहुत पहले।
सच में बहुत कठिनाई अवश्य होती, पता नहीं क्या करते, पर कठिनाई बहुत बहुत होती, क्योंकि एक स्वामी का ही सहारा था जो हमें ना वहाँ कायम करे हुआ था।
और उसके बाद ही फिर धीरे धीरे भारत के अनेक प्रांतों से बच्चे आने लगे, वहाँ पढ़ने
आने लगे, हाँ।
जब तक मैं आई तब तक तो काफी लोग थे, हाँ। आंध्रा से बाहर से,
और यहाँ तक कि स्वामी इतने मतलब हमारे वहाँ इतनी दूर से आने के लिए एक्साइटेड रहते थे कि जब भी कोई वीआईपी को लेकर आते थे वहाँ आनंदपुर में, तो हमसे अवश्य बार बार पूछवाते थे कहाँ से आया है, और हम कहें पंजाब तो तुरंत तो वीआईपी से कहते देखो कितना दूर से आया है, पंजाब से आया है, पंजाब से आया है। तो इस प्रकार से भगवान ने हमें मानो हमारे इतने दूर से आने को गौरव दिया, हाँ। हमें प्रेम दिया, तो ये कुछ उनकी जो प्रेम के जो टोकन्स थे उन्होंने हमें बांध लिया था, और हम वहाँ टिके रहे और हमारी पढ़ाई चलती रही, फिर हमने वहाँ अपनी पढ़ाई समाप्त भी की।
तो आपने अपनी पढ़ाई करने के बाद और कोई आपको कोई खास एक्सपीरियंसेस याद है आनंदपुर डेज के, जब आप वहां एक विद्यार्थी के रूप में पढ़ रही थी, क्योंकि बाद में आप फिर से लौट के वहां गई पढ़ाने?
हाँ, बहुत सी ऐसी छोटे छोटे अनुभव हुए हैं, हाँ, तब हमारा मतलब जो भी है मैच्योरिटी लेवल बहुत कम था, हम बड़े बालपन से स्वामी से भिन्न भिन्न संशय मन में निकालने का या पूर्ण करने की प्रार्थना किया करते थे और स्वामी पूरा कर दिया करते थे। मुझे जैसे उदाहरण के रूप में मेरे मन में एक विचार आया कि भगवान ने हमें सलवार कमीज में नहीं देखा, हमें परमिशन तो मिल गई, दे तो दी, पर भगवान को भी तो देखना चाहिए कि पंजाबी ड्रेस में हम कैसे लगते हैं, हम मतलब वो कैसी होती है। तो एक बार ऐसा हुआ, उन दिनों भगवान अनंतपुर काफी आया करते थे, मेरे ख्याल से हर महीने ही आ जाया करते थे, दो तीन दिन रुका करते थे फिर वापिस आया करते थे पुट्टपर्ती। तो एक बार, और उन दिनों मतलब इतना अधिक जो सजावट वगैरह नहीं होती थी, स्वामी जैसे अपने ही घर आ रहे हो और स्वामी केवल हमारे अपने थे, तो कोई विशेष तैयारी नहीं की जाती थी, पर थोड़ी बहुत सफाई, थोड़ी बहुत तैयारी, थोड़ा बहुत रंगोली डालकर कर देना, इस प्रकार से हम किया करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ, मैं रंगोली डालने में अच्छी थी, तो हालांकि मैंने यहाँ आने के बाद ही सीखा था, आर्ट वगैरह करती थी मैं, तो भगवान सुबह पुटपर्ती से चलकर पहुंच गए थे आनंदपुर पर, मेरा सब जगह जहां जहां रंगोली में डालना चाहती थी, जैसे हॉस्टल के बाहर, प्रार्थना रूम में, प्रेयर हॉल में, कॉलेज के बाहर, मेरा खत्म नहीं हो पाया था। अगर रात को डाल दो तो वो हवा से और किसी के पैरों से लगकर खराब हो सकती है, करके मैंने सुबह डालने की सोची थी और मैं अभी खत्म नहीं कर पाई थी और स्वामी आ चुके थे, तो मैंने स्वामी के आने के दर्शन भी नहीं किए थे। पर कॉलेज के बाहर, हालांकि स्वामी कॉलेज से अंदर जा चुके थे, कॉलेज के बाहर मैंने रंगोली भी नहीं डाली थी तब तक, तो मैं भागी हुई अपने कटोरों में भिन्न भिन्न रंग लिए वहां गई, और मैं सलवार कमीज में ही थी, मैं तैयार नहीं हो पाई थी, नहा भी नहीं पाई थी तब तक, तो मैं रंगोली डाल रही थी, रंगोली मैंने डाली और बिल्कुल पोर्टिको के ऊपर स्वामी की बालकनी है जिस कमरे में स्वामी रहा करते थे, और बाहर से आने वाले जो भक्त थे आनंदपुर से, वो हमारे जो सामने के लॉन में बैठा करते थे या खड़े रहते थे, स्वामी की बालकनी में से दर्शन करके फिर जाया करते थे। तो मैं रंगोली डालकर हटी ही थी, मैंने देखा सब लोग ऊपर देख रहे थे, मानो भगवान बालकनी में हूं। तो मैं अपने कटोरों के साथ ही पीछे पीछे खिसकती आई और सलवार कमीज में थी। और जैसे ही मैं पोर्टिको से बाहर निकली और मैंने देखा ऊपर, तो स्वामी मुझे ही मानो देख रहे हो, झुक कर वो मेरे बाहर निकलने की इंतजार कर रहे थे। देखकर उन्होंने वहां से मुस्कान दी और मुझे आशीर्वाद दिया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने दर्शन नहीं किए थे अब तक, स्वामी अपने कमरे में भी चले गए और मैंने दर्शन नहीं किए, तो स्वामी मुझे लगा विशेष रूप से मुझे दर्शन भी देने आए। और मेरी ये प्रार्थना की स्वामी ने मुझे सलवार कमीज में नहीं देखा वो भी उन्होंने पूरी कर दी। इस प्रकार से कुछ छोटे छोटे अनुभव मेरे हैं।
अभी आप सुन रहे थे साई का प्यार जीवन आधार कार्यक्रम।
आज इसके अंतर्गत भगवान बाबा के महाविद्यालय के अनंतपुर स्थित संकाय में सेवारत सुश्री किरण बाला अरोड़ा जी के अनुभवों का 5वां भाग प्रस्तुत किया गया था। उनसे वार्तालाप कर रही थी टीम रेडियो साई की वरिष्ठ सदस्य श्रीमती करुणा स्वरूप मुंशी जी। ये भेंट वार्ता 25 मई सन 2012 में रिकॉर्ड की गई थी।
अब प्रस्तुत है अवतार वाणी।
आज इसके अंतर्गत भगवान द्वारा 3 मार्च सन 1992 को महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में दिए गए दिव्य संभाषण से एक भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
नास्ति नास्ति महाभागम् कलिकालसमं युगम् स्मरणात् चिंतने देवा प्राप्नोति परमां गतिः प्राप्नोति परमां गतिः। कोटीश्वरुनकैन कूडु गुड्डयकानि बंगारमुतिनि ब्रतुकलेडु कालमी काकुन्न कर्रये पामगु कलसि वच्चिन मट्टि कनकमगुनु పండితుడగువాడు పశువగునొక పరి మూర్ఖుండు ఒక పరి మునిగమారు దారిద్ర్య దేవత ధనవంతునొక పరి వరించి ప్రేమతో వరుసలాడు ప్రాకులాడుటే కాని ప్రాప్తి ఏ లేకున్నా దమ్మిడి ఎయ్యను దరికి రాదు వద్దురా బాబు ఏ ఆశ పెద్దగాను బుద్ధి కలిగి జీవించును పెద్దవాడై బుద్ధి కలిగి జీవించు పెద్దవాడై ఇంతకన్నను వేరెద్ది అరుగ పరతు సాధు సద్గుణ గణ్యులవు సభ్యులారా సాధు సద్గుణ గణ్యులవు సభ్యులారా।
कलयुग सा कोई युग नहीं, हो ही नहीं सकता। जहां भगवान के नाम का ध्यान मात्र करने से उच्चतम लक्ष्य और आशीर्वाद प्राप्त होता है। यहां तक कि एक करोड़पति को भी साधारण वस्त्र और भोजन से संतुष्ट होना चाहिए। वह सोना खाकर तो जी नहीं सकता। जब समय प्रतिकूल होता है तो एक छड़ी भी सांप बन जाती है, जबकि समय अनुकूल होने पर धूल भी सोना बन जाती है। समय का चक्र एक विद्वान को मूक पशु में परिवर्तित कर सकता है और एक मूर्ख व्यक्ति भी संत बन सकता है। एक धनी व्यक्ति भी समय बदलने पर दरिद्रता की देवी का खिलौना बन सकता है। तुम अपनी इच्छा अनुसार वह सब नहीं पा सकते जो पूर्व निश्चित नहीं है। हे युवक, अपनी इच्छाओं का पोषण मत करो, उसके बदले बुद्धिमानी के साथ एक उत्तम जीवन व्यतीत करो। मैं इससे अधिक और क्या कह सकता हूं उन अच्छे लोगों को जो यहां एकत्रित हुए हैं।
संगे कीर्तनम इति संकीर्तनम, कीर्तनमुनकु संकीर्तनमुनकु एंतयो व्यत्यासमुन्नति।
सम्यक कीर्तनम संकीर्तनम, अर्थात भजनों का सामूहिक गान उत्तम भजन होता है। कीर्तनम और संकीर्तनम में एक बड़ा अंतर है।
कीर्तनम केवलम व्यक्तिगतमैनटुवंटिदि, तन प्राप्ति निमित्तमै तानु प्रापुलाडुनटुवंटिदि मात्रमे। संकीर्तन अनगा यावत् विश्वमुनके कल्याणमु चेकूर्चुनटुवंटिदि, సామూహిక భజన అని కూడాను దీనికి పేరు. మొట్టమొదట సిక్కులు గురువు అయినటువంటి గురునానక్ ప్రారంభించినటువంటిది.
కీర్తనం ఏక్ వ్యక్తిగత్ మామలా హై, యహ్ కిసీ ఏక్ వ్యక్తి ద్వారా ఉస్కీ యాచనాఓ కీ పూర్తి కే లియే గాయా జాతా హై. సంకీర్తనం కా లక్ష్య సంపూర్ణ బ్రహ్మాండ కా కళ్యాణ హోతా హై. ఇసే సామాజిక్ భజన్ భీ కహా జా సక్తా హై. భజనో కో గానే కీ ఇస్ విధి కా ఆరంభ पहली बार सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक द्वारा किया गया था।
ये संकीर्तन अन्नटुवंटिदि अनेकत्वमुलोनि एकत्वानि गुर्तिंपचेयनटुवंटिदि, अंदरि कंठमुलु चेरी ओक्क कंठमुगा एकत्वंगा उच्चरिंचेटुवंटि भजनकु संकीर्तन अनि पेरु।
संकीर्तन का उद्देश्य है विविधता में एकता का प्रदर्शन। जब सभी प्रतिभागी एक साथ मिलकर एक आवाज में सुर से सुर मिलाकर गाते हैं तो उसे संकीर्तन कहा जाता है।
ये संकीर्तन अनेटुवंटिदि नालुगु विधमुलुगा उंटुन्नदि। ओकटि गुण संकीर्तन, रेंडवदि लीला संकीर्तन, मूडवदि भाव संकीर्तन, नालुगवदि नाम संकीर्तन।
संकीर्तन के चार प्रकार होते हैं। एक है गुण संकीर्तन, दूसरा लीला संकीर्तन, तीसरा भाव संकीर्तन और चौथा है नाम संकीर्तन।
गुण संकीर्तन अनगा भगवंतुनि कल्याण गुणमुलनु मात्रमे वर्णिस्तू तादात्मन पोंदी तन जीवितमुनंदु अति सद्गुणमुलनु एर्पर्चुकुनटकु तगिन कृषि चेयटम। ई गुण संकीर्तन त्यागराजु काविंचिनटुवंटि వాచామ గోచరుండని రామ, నీ చరితములను పొగడ బ్రహ్మాదులకునైన తరమ, కాచుకున్నాను నీది కృపకై నా మురాలకించి బ్రోవుమయ్య, వాచామ గోచరుండని కాలుడు కొనిపోయిన గురుపుత్రుని తెచ్చి ఇచ్చినావు, కాలుని మదం అడచినావు, వసుదేవదేవకి శరణు విడిపించినావు, వాలుగంటి అయిన మేలు ద్రౌపది మురళిడ బ్రోచినావు, మేలు మేలు పాండవులను గాచినావు, కుచేరుని ఆర్తి దీర్చినావు, కురుపియైన కుబ్జా వక్రములను పోగొట్టినావు, 16,000 రమామణులను బ్రోచినావు రామ, వాచామ గోచరుండని ఏదో వాచో నివర్తంతే అప్రాప్య మనసా సహాని, వాక్కులకు అలవి కానటువంటి గుణములు నీలందు ఇమిడి ఉన్నవని త్యాగరాజు వర్ణిస్తూ వచ్చాడు।
ఐసే భజన్ కో గుణ సంకీర్తన్ కహా జాతా హై, जिसमें एक भक्त दैवत्व के विशेष मंगलकारी गुणों का वर्णन करता है, दैवत्व के साथ एक रूप होने का अनुभव करता है और ईश्वरीय गुणों की कामना करता है। त्यागराज इसी प्रकार की गायकी का सहारा लेते थे। अपने कीर्तन में वे कहते हैं, हे ईश्वर, आप सभी शब्दों से परे हैं। क्या ब्रह्मा या अन्य देवताओं के लिए यह संभव है कि वे आपकी गौरवपूर्ण महानता की प्रशंसा भी कर सकें? मैं आपके अनुग्रह की प्रतीक्षा कर रहा हूं, मेरी प्रार्थनाओं पर ध्यान दीजिए। आपने तो गुरु के उस पुत्र को भी पुनर्जीवित कर दिया था जिसके प्राण यमराज ने हर लिए थे। आपने कामदेव को अपने अधीन कर रखा है। आपने वासुदेव और देवकी को कारागार से मुक्ति दिलाई थी। जब द्रौपदी ने सब तरफ से निराश होकर आपको पुकारा था, तब आपने ही उनकी रक्षा की थी। आप पांडवों के संरक्षक थे। आपने कुचेला को उसकी दरिद्रता से मुक्ति दिलाई। आपने 16,000 कुंवारी कन्याओं की पराधीनता से रक्षा की थी। इस प्रकार त्यागराज ने अपने गीतों में भगवान के महानतम गुणों का विस्तार से वर्णन किया है।
लीला संकीर्तन अनगा इदि केवलमु पवित्रमैनटुवंटि ओक्क భగవంతుని యొక్క తరంగములను నృత్యముగా ఆడుకుంటూ ఆ యొక్క లీలలను తాను అనుభవిస్తూ ఆ లీలని యందు లీనమై ఉండేటువంటి ఒక తత్వము ఇది లీలా సంకీర్తన.
ఇది ఏ గీత గోవిందం అని కూడాను చెప్తూ వచ్చారు.
లీలా సంకీర్తన్ దివ్యత్వ కి పవిత్ర లీలాఓ కే భక్త ద్వారా ప్రదర్శిత ఉస్ పరమానంద కో రేఖాంకిత కర్తా హై జో భావ విభోర్ హోకర్ కియే జానే వాలే नृत्य और गीत द्वारा दिव्यत्व में पूरी तरह लीन होकर किया जाता है। जयदेव के गीत गोविंदम में इसे उदाहरणों के साथ प्रस्तुत किया गया है।
इनका भाव संकीर्तन इदि केवलमु ఒక राधा మాత్రమే దీనిని ఉచ్చరిస్తూ భగవంతుని యొక్క భావమునందు లీనమై తన తత్వమును కూడాను భగవత్ తత్వముగా రూపొందింప చేసుకున్నటువంటిది. సఖ్య భావము, వాత్సల్య భావము, అనురాగ భావము, మధుర భావము అనేటువంటి ఈ యొక్క 5 భావములు ఎందుకును తన యొక్క జీవితమును అనుభవిస్తూ వచ్చింది. కనుక రాధ మీరాల యొక్క పవిత్ర భావము ఈ యొక్క భావ సంకీర్తనగా రూపొందుతూ వచ్చింది.
భావ సంకీర్తన్ ఇస్కా సర్వోత్తమ దృష్టాంత రాధా మాత్ర హై जो भगवान के प्रति अपनी विभिन्न भावनाओं को प्रदर्शित करती हैं और भक्ति के हर भाव द्वारा दिव्यत्व के साथ स्वयं को एकाकार करती हैं। वे अपनी भक्ति को शांत भाव, साख्य भाव, वात्सल्य भाव, अनुराग भाव तथा मधुर भाव जैसे 5 भावों में प्रकट करती हैं। राधा और मीरा भाव संकीर्तन की उत्तम प्रतिपादक थी।
नाम संकीर्तन ఇది కేవలము చైతన్యుడు మాత్రమే సల్పుతూ వచ్చాడు.
సర్వనామములు కూడాను
నీ యొక్క నామములే. నీ నామము లేని జగత్తు కాని, నీ రూపము లేని జగత్తు కాని ఈ యొక్క విశ్వమునందు కానరాదు.
సర్వరూపధరం శాంతం సర్వనామధరం శివం సచ్చిదానంద రూపం అద్వైతం సత్యం శివం సుందరం సత్యం శివం సుందరం.
ఈ యొక్క జగత్తు యొక్క సౌందర్యం అంతా ఇక్కడను మీ నామరూపములే భగవంతుడా అని ప్రతి పదార్థమును, ప్రతి అణువును, ప్రతి కణమును కూడాను భగవత్ స్వరూప స్వభావంగా భావించి నామం చేత తరించినటువంటి వాడు చైతన్యుడు.
నామ సంకీర్తన్ కీర్తన్ కే ఇస్ రూప్ కే ప్రతిపాదక్ చైతన్య మహాప్రభు థే. సభీ నామ ఆప్కే హీ హై. ఇస్ బ్రహ్మాండ మే ఐసా కుచ్ భీ నహీ హై జిస్ పర్ ఆప్కే నామ యా స్వరూప్ కీ ఛాప్ నా హో. చైతన్య భగవాన్ కే నామ కో అప్నీ గాయకీ ద్వారా ఇస్ ప్రకార్ వ్యక్త కర్తే హై जैसे कि ब्रह्मांड की सुंदरता और महानता सब कुछ भगवान के नाम का ही प्रतीक है.
अदृष्टवशात्
आया युगमुलियंदु ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధమైన మార్గమును అనుసరించుచుండగా ప్రశాంతి నిలయవాసులు ఈ యొక్క నాలుగింటిని కూడాను అనుభవించటం అనేటువంటిది ఇది మహా అదృష్టము. గుణ సంకీర్తన, లీలా సంకీర్తన, భావ సంకీర్తన, నామ సంకీర్తన, నాలుగింటి యొక్క సమ్మిళితమైనటువంటి స్వరూపమే మన యొక్క భజన.
హాలాకి బీతే యుగో మే భగవాన్ కా గుణగాన్ కర్నే కే లియే భక్తగణ గాయకీ కే కిసి నా కిసి ప్రకార కో అప్నాతే రహే హై. వహీ ప్రశాంత నిలయం కే నివాసియో కా యహ పరమ సౌభాగ్య హై కి వే సంకీర్తన కే చారో ప్రకారో కా ఆనంద లే రహే హై. యహాన్ గాయ జానే వాలే భజనో మే సంకీర్తన కే చారో రూపో కా సుందర మేల్ హోతా హై.
ఈ నాలుగింటికి కూడాను వితిక్షణమైనటువంటి మార్గం మరొకటి ఉన్నది,
నామ లిఖితము అని. మనసునందు తలంచుచు, మాటతో స్మరించుచు,
విషయంలో వ్రాయటము త్రికరణ శుద్ధికి మార్గము. వచసేకం కర్మణ్యేకం, ఇది మహత్మనం, ఇది మహత్తరమైనటువంటి యొక్క మార్గము.
భగవాన్ కే నామ కా గౌరవ గాన్ కర్నే కా ఇన్కే అలావా భీ ఏక్ విశేష తరీకా ఔర్ హై, వహ్ హై నామ లిఖితం, అర్థాత్ భగవాన్ కే నామ కో లిఖనా. మన్ మే భగవాన్ కే నామ కా ధ్యాన్ కర్నా, ముఖ్ సే నామోచ్చారణ కర్నా ఔర్ హాత్ సే నామ లిఖనా త్రికరణ శుద్ధి కీ ప్రస్తుతి కహలాతా హై, అర్థాత్ మన్ వాణీ ఔర్ కర్మ కీ శుద్ధి.
కనుక జగత్తునందు భగవత్ నామం అనేటువంటిది అనేక రూపములుగా ప్రచురిస్తూ వచ్చుందని. జయదేవుడు కేవలము భగవత్ లీలను మాత్రమే చింతిస్తూ తన యందే భగవంతుడు ఉండినట్టుగా విశ్వసిస్తూ ఆలు జీవితంలోని ఆటలు పాటలు మాటలంతి కూడాను భగవంతుని అనుభవిస్తూ నీ ప్రేమ తప్ప నాకు అన్య ప్రేమలు నాకు అక్కర్లేదని విశ్వసిస్తూ ప్రేమతో ప్రేమను కలిపి ప్రేమస్వరూపుడుగా మారినటువంటి వాడు జయదేవుడు. కానీ జయదేవుని యొక్క కీర్తనలు సరిగా అర్థం చేసుకునేటువంటి వ్యక్తులు లేకపోవటం చేత అనర్థములతో దీన్ని వ్యర్థం గావిస్తూ వచ్చారు.
భగవాన్ కే నామ కా మహిమా మండన్ పూరే విశ్వ మే విభిన్న తరీకో సే కియా జాతా హై. ఏక్ జయదేవ్ థే జో సదా దివ్యత్వ కీ లీలాఓ కా ఆనంద లియా కర్తే థే, అప్నే భీతర్ దివ్యత్వ కీ ఉపస్థితి కా అనుభవ కియా కర్తే థే ఔర్ అప్నే ప్రత్యేక్ కర్మ కో దైవత్వ కీ లీలా కా ఆనంద లేనే హేతు సమర్పిత్ కర్ దియా కర్తే థే. వే మహసూస్ కర్తే థే కి భగవాన్ కే ప్రేమ కే అలావా ఉన్కా కోయి ప్రయోజన్ నహీ హై, ఉన్హోనే అప్నే ప్రేమ కో దైవత్వ కే ప్రేమ మే విలీన్ కర్ దియా థా ఔర్ ఇసీలియే దివ్య ప్రేమ కే పరమ స్వరూప్ బన్ గయే థే. చూంకి లోగ్ ఉన్కే కీర్తనో కే ఆధ్యాత్మిక్ భావార్థ సే జుడ్ నహీ పాయే, ఇస్లియే ఉన్హోనే జయదేవ్ కీ అష్టపదీజ్ కీ సహీ వ్యాఖ్యా నహీ కీ ఔర్ ఉన్కా గలత్ అర్థ లగాయా.
आप सुन रहे थे अवतार वाणी.
आज इसके अंतर्गत भगवान द्वारा 3 मार्च सन 1992 को महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में दिए गए दिव्य संभाषण से एक भाग प्रस्तुत किया गया था.
साई प्रेम वाणी भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश अब हिंदी में.
अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम भजन शिक्षा. कक्षा में प्रस्तुत हैं भगवान बाबा के प्रिय भजन गायकों में से एक श्री श्रीनिवासलु सर एवं टीम रेडियो साई के प्रिय सदस्य श्री अनिरुद्ध श्रीनिवासन जी.
गुरुदेवा शरणं देवा.
रेडियो साई भजन शिक्षा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है. आज की कक्षा के लिए हमने गुरु वंदना करता हुआ ये भजन चुना है। चलिए अब इस भजन के बोल जान लेते हैं।
गुरुदेवा शरणम देवा पाहि प्रभो शरणम देवा सुंदर रूपा श्री साई देवा शरणम शरणम सद्गुरु देवा।
आज की कक्षा के लिए इस भजन को जी पंचम श्रुति में गाया जा रहा है, जिसे डी अर्थात सफेद दो का मध्यम भी कहते हैं।
गुरुदेवा शरणम देवा,
गुरुदेवा शरणम देवा,
गुरुदेवा शरणम देवा,
गुरुदेवा शरणम देवा,
पाहि प्रभो शरणम देवा,
पाहि प्रभो शरणम देवा,
पाहि प्रभो शरणम देवा,
पाहि प्रभो शरणम देवा,
गुरुदेवा शरणम देवा,
गुरुदेवा शरणम देवा,
सुंदर रूपा श्री साई 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 देवा,
शरणम शरणम सद्गुरुदेवा,
शरणम शरणम सद्गुरुदेवा,
शरणम शरणम सद्गुरुदेवा,
शरणम शरणम सद्गुरुदेवा,
गुरुदेवा शरणम देवा।
कहरवा ताल और राग शिवरंजनी पर आधारित इस भजन की धुन जान लेने के बाद आइए अब रुख करते हैं साई भजनों की आत्मा कहे जाने वाले भाव पक्ष का। इस भजन में प्रयुक्त तकरीबन सभी शब्दों के अर्थों से हम परिचित ही हैं, अतः हम इस भजन की पंक्तियों में निहित भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। पहली पंक्ति में गुरु से शरण देने की याचना की जा रही है।
गुरुदेवा शरणम देवा।
हमारे जीवन में गुरु का महत्व समझाने हेतु स्वामी ने सन 1965 में 14 जनवरी को दिए संभाषण में कहा था कि एक बार एक व्यक्ति बहुत ही निराश था। उसने रेलवे टिकट काउंटर से टिकट मांगी, परंतु वहां कार्यरत कर्मचारी उसे टिकट दे पाने में इसीलिए असमर्थ था क्योंकि इस व्यक्ति को अपने गंतव्य का ज्ञान नहीं था। उसे कहां जाना है ये मालूम नहीं था। वो बस त्रस्त हो गया था और उस जगह से निकलना चाहता था, परंतु जाना कहां है ये स्पष्ट ना बता पाने के कारण टिकट कर्मचारी उसकी चाहकर भी कोई सहायता नहीं कर पाया। स्वामी ने कहा कि हमारी दशा भी इस व्यक्ति के जैसी ही है। ये संसार हमेशा सुखद अनुभव ही नहीं देता। इस संसार में पूर्णतः डूबा व्यक्ति अपने आप को खुश नहीं पाता। इंसान सुख दुख की लहरों में गोता खाता रहता है। भाग्य कभी उसका साथ देता है, कभी नहीं भी देता। कभी उसे आदर सम्मान प्राप्त होता है तो कभी निंदा। वातावरण में फैले दुर्गुण और दुष्प्रभाव उसके सुख चैन को हर लेते हैं। जीव थपेड़े खाकर इन सब से बचना चाहता है, लेकिन उसे ज्ञात नहीं है कि उसे जाना कहाँ है, कहाँ उसे शांति मिलेगी और कहाँ आनंद प्राप्त होगा। आध्यात्मिक गुरु ही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि हमें जाना कहाँ है, लेकिन गुरु भी सिर्फ गंतव्य और दिशा का बोध ही करा सकते हैं। चलना तो हमको स्वयं ही है उनके दिखाए रास्ते पर। गुरु के मार्गदर्शन और परामर्श के बाद ये हम पर ही निर्भर करता है कि हम गंतव्य तक पहुंचना भी चाहते हैं या नहीं। एक बार एक छात्र ने स्वामी से पूछा, स्वामी शरणागति का अर्थ क्या है? तो स्वामी ने इसका बहुत ही सुंदर उत्तर देते हुए कहा, तुम लोगों ने कार देखी है ना, उसमें कितने गियर्स होते हैं? चार गियर होते हैं। जीवन में भी चार गियर्स होते हैं, सुख दुख हानि लाभ। और जिस प्रकार वाहन में एक से दूसरे गियर में जाते समय क्लच का इस्तेमाल करते हैं ताकि झटका ना लगे, उसी प्रकार हमें भी जीवन में इन चार गियर्स में से एक से दूसरे गियर में जाते समय आत्मसमर्पण रूपी क्लच का इस्तेमाल करना चाहिए। जीवन में सुख दुख हानि लाभ तो लगा ही रहता है, चलता ही रहता है। शरणागति रूपी क्लच के इस्तेमाल से हम झटकों और दुष्प्रभावों की चोट से बच सकते हैं। पाही प्रभो, इस भजन की द्वितीय पंक्ति में इससे आशय है कि हम ईश्वर से हमारी मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। इस भजन की तीसरी पंक्ति में हम हमारे प्रिय भगवान के मनमोहक रूप की वंदना कर रहे हैं।
सुंदर रूपा श्री साई देवा।
इस संदर्भ में हम कुछ एक अनुभवों के माध्यम से उन्हें अनुभव करने का प्रयास करते हैं। स्वामी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमारी सुंदरता हमारे गुणों पर निर्भर करती है। सन 1993 के समर कोर्स के दौरान दिए गए एक दिव्य संभाषण में उन्होंने कहा, मनुष्य घर को और अपने शरीर को संवारता है क्योंकि वो सुंदर दिखना चाहता है, लेकिन ऐसा बाहरी तौर पर किया गया प्रयास केवल कुछ ही समय के लिए सुख दे सकता है, इससे शाश्वत आनंद की प्राप्ति नहीं होती। हमें वास्तविक तृप्ति आंतरिक सुंदरता से प्राप्त होती है, बाह्य सौंदर्य से नहीं। इसीलिए हमें अपने अंदर हृदयागत सौंदर्य को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। प्रेम, करुणा एवं सबूरी आदि कुछ ऐसे गुण हैं जो हृदय की सुंदरता बढ़ाने में सहायक होते हैं। बहुत समय पहले एक बार जब जॉन हिस्लॉप जी भगवान बाबा के साथ थे, तब भगवान बाबा के भक्त दल में से एक नवागंतुक महोदय ने स्वामी से कहा कि लोग दर्शन के दौरान बाबा की तस्वीरें खींचकर जब बाहर उन्हें बेचते हैं तो वे तस्वीरें उतनी सुंदर और आकर्षक नहीं दिखती जितने स्वामी वास्तव में दिखते हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी से संबंधित सभी वस्तुएं भी उतनी ही मनमोहक एवं सुंदर होनी चाहिए जितने स्वामी स्वयं हैं। तो बाबा ने हंसकर उन्हें समझाते हुए कहा कि सुंदरता तो देखने वाले नेत्रों में होती है, न कि नजर आने वाली वस्तु में। प्रेम ही सौंदर्य की आत्मा है। हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा तो हमें सुंदरता नजर नहीं आएगी। स्वामी ने एक घटना बतलाते हुए अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, अंग्रेजी भाषा के एक मूर्धन्य साहित्यकार लेखक श्री जॉनसन जी अपनी श्रीमती जी की सुंदरता का गुणगान करते नहीं थकते थे। वे उनसे बहुत प्रेम करते थे। एक बार उनके एक मित्र ने उनसे कहा कि तुम्हारी बीवी तो काफी वृद्ध और अनाकर्षक दिखती है, ये क्या मनगढ़ंत बखान कर रहे हो? वाकई में उनकी पत्नी सुंदर नहीं थी, लेकिन जॉनसन जी को वो बहुत सुंदर दिखती थी, तो कोई क्या कर सकता है। एक बार अपने छात्रों को स्वामी ने ध्यान लगाने का सहज उपाय बतलाते हुए कहा, मैंने ये शरीर तुम लोगों के लिए ही धारण किया है ताकि तुम मुझे देख सको। ध्यान के समय अपने मानस पटल पर तुम मेरे इस स्वरूप के चेहरे और चरणों पर ही ध्यान केंद्रित करो। पहले मेरे केश देखो, फिर मेरे नेत्रों को। मेरे जैसे नयन किसी और के नहीं हैं। इनमें बहुत गहराई है। फिर मेरी दोनों आंखों के बीचों बीच मेरी नासिका के ऊपरी भाग में स्थित परत को देखो। क्या किसी और के चेहरे पर यह तुम्हें दिखाई देती है? नहीं देगी। फिर मेरी मुस्कुराहट का ध्यान करो। ऐसी बाल सुलभ मुस्कान किसी की नहीं है। चेहरे के बाद सीधे मेरे चरणों पर आ जाओ। इसीलिए मैं ये लंबा चोगा पहनता हूं। फिर पैरों से पुनः चेहरे पर आ जाओ। इसी प्रकार इस प्रक्रिया को यथासंभव दोहराते रहो, जब तक एकाग्रता बनाए रख सको तब तक। यही मेडिटेशन है, अर्थात ध्यानावस्था है। यदि कोई भगवान शिव में आस्था रखता है और ध्यान करना चाहता है तो उसके लिए ये कितना दुष्कर होगा उनके स्वरूप पर ध्यान लगा पाना, जरा सोचो तो। पहले उसे गंगा जी को देखना है, फिर चंद्रमा को, फिर नाग को, फिर रुद्राक्ष को, और यदि इसमें से कुछ भी छूट गया तो उसे ये सब पुनः दोहराना पड़ेगा। इतने में तो नींद ही आ जाएगी। इसीलिए मेरे स्वरूप पर श्रद्धा और प्रेम सहित ध्यान लगाओ। तो चलिए, इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत होकर हम इस भजन को एक बार पुनः दोहराते हैं।
गुरुदेवाय शरणं
के साथ हमारे आज के भजन प्रशिक्षण के कार्यक्रम का अब समापन होता है। हमें आशा है कि आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी। हम शीघ्र ही एक और भजन लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय साई राम।
साईराम, प्रेमावतार श्री सत्य साई साई प्रेमवाणी के इस भाग में आपका स्वागत है। आज के इस प्रसारण में हम प्रारंभिक दिनों के प्रशांति निलयम के प्रार्थना मंदिर, वेद पाठ, प्रशांति पताका उत्सव आदि की सुमधुर यादों को पुनः जीवंत करेंगे। ये अलौकिक प्रसंग सत्यम शिवम सुंदरम से लिए गए हैं।
प्रशांति निलयम का प्रार्थना मंदिर ही उसका मुख्य अंग है। वहां की प्रशांतिदायक साधना है वेद पाठ, ध्यान और भजन। इसी कारण ये मंदिर प्रशांति निलयम का हृदय है। इस विशाल हॉल में पश्चिम की ओर एक उन्नत मंडप है, उसकी बाईं ओर शिरडी साईं बाबा का पूरे आकार का एक सुमनोहर सुंदर तैल चित्र व दाईं ओर सत्य साई बाबा का उतना ही बड़ा चित्ताकर्षक तैल चित्र दीवार पर शोभायमान है। इनके बीच में शिरडी साई बाबा की चांदी की एक प्रतिमा रखी है। ये प्रतिमा लकड़ी के पीढ़े पर चांदी के नाग के छत्र के नीचे रखी हुई है। उस पीढ़े पर सत्य साई बाबा का एक छोटा सा चित्र भी शोभित है। बाबा ने कहा है कि ये सब चित्त की एकाग्रता एवं ध्यान को केंद्रित करने के ही साधन हैं। मंदिर में रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य, ईसा मसीह, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, सूरदास एवं श्रीराम व श्री कृष्ण आदि अवतारों के चित्र लगाए गए हैं। ऊपर के खंड के सब कमरे बाबा के निवास के लिए सुरक्षित थे। नीचे के कमरे अधिकतर भंडार गृह के रूप में उपयोग में लाए जाते। केवल एक दो कमरे भक्तों को साक्षात्कार देने, उनसे बातचीत कर उन्हें धैर्य, उत्साह आदि का अनुग्रह प्रदान कर उन्हें शारीरिक मानसिक दुखों को दूर कर आशीर्वाद देने के लिए बाबा द्वारा उपयोग में लाए जाते। ऊपर के बरामदे के सामने एक मुख्य मंडप है, जो भवन के आगंतुक भक्तों को सदा विहसित मुद्रा में प्रसन्न करती हुई संगमरमर से बनी गोपाल कन्हैया की प्रतिमा से शोभित है। उसके ही समीप आकर बाबा बार बार नीचे प्रतीक्षा करते भक्त समूह को दर्शन देते। उन दिनों नवरात्रि के प्रथम दिन, अपने जन्म दिवस के दिन एवं शिवरात्रि आदि उत्सवों के दिन बाबा प्रशांति निलयम पर प्रशांति पताका फहराते। पताका फहराने के पूर्व वे उस मुख्य मंडप में विद्यमान होकर भक्तों को आशीर्वाद देते एवं उपदेश प्रवचन आदि देते। भवन के शिखर पर बाबा की एक प्रतिमा है, वहां के ध्वज स्तंभ का उपयोग इस पताका उत्सव के लिए उन दिनों किया गया। तत्समय निर्मित बाबा की इस प्रशांति पताका के विषय में कुछ वर्णन करना आवश्यक है। पताका पर अंकित चिन्ह, उस चिन्ह के गूढ़ अर्थों तथा उनके प्रभाव के विषय में बाबा ने कई अवसरों पर उल्लेख किया। प्रशांति निलयम निर्माण के प्रारंभिक दिनों में ये प्रशांति मंदिर के सामने के अहाते में इस प्रकार बनवाया गया था कि सबको दिखाई दे। चक्राकार के उस चिन्ह के मध्य कमल स्थित एक स्तंभ होने के कारण भक्तों ने उसका नाम कमल चक्र रखा। इस चक्र में सबसे बाहर की ओर दो रेखाओं के बीच गोलाकार घेरे में स्थित रेत का एक चक्राकार हिस्सा काम की संज्ञा है। बाबा कहते हैं वो बेकार है, निष्प्रयोजन है, रेत के ही समान। मनुष्य को उसे पार करना चाहिए। दूसरे आवरण में छोटे छोटे निरुपयोगी झाड़ हैं, जो यथेष्ट बढ़ते हैं। इस चक्र को भी पार करें तो आगे दो सीढ़ी लाल रंग की थी, जो प्रतीक है द्वेष का। इष्ट प्राप्ति न होने पर द्वेष, कष्ट देने वालों से द्वेष, इन मनोभावों पर भी साधक को विजय पानी चाहिए। यदि जीत जाएं तो हर्ष भरी हरियाली रूपी शांति, दर्शनीय दृश्य, मन की ठंडक, विशाल प्रदेश मिलता है। वही है प्रेम, सर्व समान भावना से उत्पन्न प्रेम। काम, क्रोध, द्वेष आदि रूपी कीचड़ से बिना प्रभावित हुए शुद्ध प्रेम। इसको प्राप्त कर साधक सत्यता, एकाग्रता से ध्यानासक्त हो जाता है और योग में प्रतिष्ठित हो जाता है। इस योग की स्थिति का ही चिन्ह है चक्र के मध्य में स्थित योग दंड। योग साधना की विभिन्न सूचनाएं उस योग दंड में प्रदर्शित की गई। योग की परिपक्वता से उस चिन्ह में प्रदर्शित रीति से हृदय कमल प्रफुल्लित होता है। तब उसके बीच में दिखाए प्रकाश से ही ज्ञान ज्योति दैदीप्यमान हो उठती है। प्रशांति से प्रकांति, प्रकांति से परम ज्योति, इस प्रकार क्रमशः साधक आत्म साक्षात्कार कर लेता है। इस प्रकार गूढ़ अर्थों के प्रतीकों से भरे हुए उस पताका पर उत्तम साधक की आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक उन्नत पथ स्वयं बाबा द्वारा चित्रित किए गए। भगवान ने भक्त को ही पताका में स्थित किया है, ये कहना भी अनुचित न होगा, क्योंकि गरुड़, हनुमान आदि भक्तों के रूप में ध्वजा में अंकित कर उनका आदर्श सामने रखकर एक घोषणा करती सी ये लीला थी। चक्र के बाहर के आवरण को घेरे हुए आठ स्थानों में अष्ट सिद्धियों को सूचित करते हुए आठ मिट्टी के गमले बनाए गए। इस प्रकार सिद्धियों का प्रतीक ये गमले थे। बाबा ने बताया कि योग साधना और सिद्धियों में परस्पर संबंध होते हुए भी उन सिद्धियों को बहुत दूर रखना चाहिए, इसलिए उनको बाहर के आवरण में रखा गया है। पताका उत्सव के दिनों में बाबा कहा करते, इस पताका को इसी समय अपने अपने हृदय मंदिर में फहराओ, वो सदा वहीं विराजमान रहे। कोप को जीतकर, अहंकार को मिटाकर, दूसरों के हित के लिए अनन्य प्रेम की अभिवृद्धि कर लो। प्रतिदिन ईश्वर के ध्यान के लिए थोड़ा समय समर्पित करो और आगे आगे बढ़ते जाओ। जय साईं राम।
हमने भगवान बाबा द्वारा बताए गए प्रशांति पताका पर अंकित चित्रों के गूढ़ रहस्यों को जाना। बाबा द्वारा सदैव बड़े सहज रूप से प्रत्येक कार्य को बड़ी ही गहराई से आध्यात्म से जोड़कर प्रतीकों के स्वरूप में बताकर भक्तों को चकित करते हुए उनकी आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया गया।
इसी के साथ हमारे साई प्रेमवाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक ईमेल या व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा पता है listener@radiosai.org, listener@radiosai.org, एवं हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258, 9393258258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियाँ YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहाँ देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल रेडियो साई हिंदी को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छा अनुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। भगवान के चरणों में हमारी श्रद्धा और भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, इसी प्रार्थना के साथ हम साई प्रेम वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय साई राम।